रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़ साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय।
ओम शांति। यू पर लगा यह आसमान नीचे रह जाए, जो तूड़े तो दो जहां पीछे रह जाए, यू पर लगा कि आसमान भी नीचे रह जाए, हाथ उठा चांद तारे तोड़ ला, चल तो यू की एक कारवा बना, जो तू ठान ले तो खुद को जान ले, तो तूफा भी अपना रुख बदल जाए, चल यू चल कुछ यू चले, आ कि अब सब हो अपने पीछे, कुछ यू उठे हम की तारों से ऊपर, खुद से लड़े हम हो खुद से बेहतर, लेके जमी से आसमां तक अपना नाम लिख जाए, हाथ उठा चांद तारे तोड़ ला, चल तू यू की एक कारवा बना, जो तू ठान ले तो खुदी को जान ले, तो तूफा भी अपना रुख बदल जाए, यू पर लगा या आसमां भी नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो जो दो जहां पीछे रह जाए। अध्यात्म का लक्ष्य है, स्वयं को जानना, स्वयं को इतना सशक्त बना देना, इतना शक्तिशाली, स्वयं में जो शक्तियां निहित है उन्हें बाहर निकालना, अपनी अनंत शक्तियों को जानना, टू अनलीश द अनलिमिटेड पावर्स विच आर विद इन। मुरली में बाबा ने कहा है, अपनी विशेषता को जानना, अपनी विशेषता को कार्य में लगाना, अपनी विशेषताओं में स्थित होना। किसी को एक आता है, किसी को दो, और कुछ कुछ आत्माएं हैं जिनको तीनों, और ऐसी आत्माओं की कुछ विशेषता है। दूसरी मुरली में बाबा ने सुनाई, स्वयं को इतना शक्तिशाली बना देना, जैसे पपीते के वृक्ष को जब फल आते तो जो माली होता है या देखभाल करने वाला होता है वो उन फलों को कपड़ों से ढक देता है। क्यों? क्योंकि पक्षी और कीट खा ना जाए। उसी तरह यदि मीठा फल खाना है तो अपनी योजनाओं को गुप्त कर दो, अपनी प्लानिंग्स को, जीवन परिवर्तन की योजना है या पुरुषार्थ की योजना है, कैसी हो, गोपनीय, ढकी हुई। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस की प्लानिंग। इस मुरली में बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग को इतनी महीन कर दो, इतनी सूक्ष्म, और जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो गुप्त होगी। बाहर प्रकट होते ही उसमें स्थूलता आ जाती, इसलिए प्लानिंग कैसी हो, योजना गुप्त, गोपनीय, क्लैंडेस्टीन, सीक्रेट, इनकॉग्निटो। पहली मुरली, तुम कौन हो? हर मुरली हमें स्मरण दिलाती है कि हम है कौन। इसमें बाबा ने कहा, तुम हो लाइट हाउस और माइट हाउस, केवल लाइट और केवल माइट नहीं, परंतु हाउस अर्थात स्टॉक जमा है, अर्थात लाइट स्वरूप तुम हो और दूसरों को लाइट देने वाले, अर्थात शक्तियां तुम में है और वो शक्तियों को तुम बांट रहे हो, आत्माओं को दे रहे हो। तो लाइट है, माइट है, हाउस सर्वशक्तिवान, एक है सर्वशक्तिवान, एक है सर्वशक्तिवान, एक है कल्याणी, एक है विश्व कल्याणी। जो शक्तिवान है वो कल्याणी हो सकते हैं, परंतु विश्व कल्याणी के लिए कौन चाहिए? सर्वशक्तिवान। तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो देने वाले, जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति देने वाले। उदाहरण बहुत सारे दिए हैं, कोई पानी का प्यासा है और उसे भोजन दो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कोई पानी का प्यासा हो और उसे तुम हीरे दो, तो कितना भी बड़ा हो या हीरा हो और कितने सारे हीरे हो, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसे वही चाहिए जो जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसे जिस शक्ति की आवश्यकता है, निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, समाने की आवश्यकता है, उसको वही शक्ति उस समय देनी है। अगर उसके बजाय उसे परखने की शक्ति या फिर सामना करने की शक्ति दे दो तो काम नहीं होगा। तुम लाइट हाउस हो, तुम्हें लाइट फैलानी है। तुम पावर हाउस हो, तुम्हें पावर फैलानी है। परंतु फैलाने से पहले स्वयं में इतनी पावर्स, इतनी लाइट, इतना प्रकाश भरना है। तो पहला समान है, मैं लाइट हाउस, माइट हाउस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और ये जब करोगे तभी तुम क्या गाए जाओगे, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी, सर्वशक्ति दाता, जी दाता। जो सर्वशक्तिवान है वो सूर्यवंशी, और जो शक्तिवान है वो चंद्रवंशी। ये सब तुम्हारा गायन है। आत्माओं को संतुष्ट जो कर सके वही क्या है, संतुष्ट मणि। और वही कौन बनेंगे, कौन सी मणि बनेंगे? नेक्स्ट लाइन क्या है मुरली में, मस्तक मणि, अर्थात आत्माओं को जो चाहिए वो देना। जो जीवांचील तोते लाहो प्राणी जात, मनोवांछित फल देना, उनकी शुद्ध और शुभ कामनाओं को पूरा करना। जी दाता और सर्वशक्ति दाता, ऐसे जो होंगे वही कौन बनेंगे, माननीय। और जो यहां माननीय नहीं वो वहां पूजनीय भी नहीं। और माननीय कौन बनेंगे, जो देने वाले, जो दाता है। अगर बाबा ने कहा चार सब्जेक्ट है और चार सब्जेक्ट में चार टाइटल है, ज्ञान के सब्जेक्ट में टाइटल है ज्ञान नॉलेजफुल, सुदर्शन चक्रधारी और मास्टर ज्ञान सागर। योग के सब्जेक्ट में टाइटल है पावरफुल, धारणा के सब्जेक्ट में टाइटल है इसेंसफुल, और सेवा के सब्जेक्ट में टाइटल दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। परंतु हाँ ऊपर दिया है विश्व कल्याणी हो सकता है, बाकी वहां नहीं दिया है। और इन चार टाइटल्स में से, चार सब्जेक्ट चार टाइटल्स में से एक भी टाइटल कम होगा तो तुमको एक चीज कट हो जाएगी, वो कौन सी, ब्लिसफुल। ना आत्माओं को ब्लिस दे सकेंगे, ना स्वयं को ब्लिस दे सकेंगे, ना बाप से ब्लिस ले सकेंगे। तो बैलेंस, ब्लेसिंग से बैलेंस से, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग से ब्लेस। तुम हो ब्लेसफुल, तुम हो मास्टर ज्ञान सागर नॉलेजफुल स्वदर्शन चक्रधारी, तुम हो पावरफुल, तुम हो इसेंसफुल, तुम हो त्रिकालदर्शी। और ये सब के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद की चेकिंग। तुम हो चेकर, चेकर नहीं तो मेकर भी नहीं। उसके बीच में और एक शब्द है, पर चेक और चेंज के बीच में क्या मुरली में नहीं है, परंतु चेंज, चेक करो, चेंज करो, मेकर बनो। और दूसरी मुरली में कहा है चेकिंग यहां नहीं करोगे तो फिर वहां बुकिंग, यहाँ है चेकिंग और वहां है महान पद की बुकिंग, एयर कंडीशन की बुकिंग, एसी की बुकिंग। चेकर और मेकर। अपनी चेकिंग को क्या करो, महीन, संपूर्ण विजयी। जो है उनमें दो चीजें नहीं होगी, कौन सी, एक आलस और उसका रॉयल रूप है अलबेलापन। इसका अंश भी ना हो, इसका वंश भी ना हो। महारथियों में अंश नहीं, घोड़ेस्वार में वंश नहीं। अंश अर्थात मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। वंश अर्थात उनका एक ट्रेडमार्क शब्द है, वो कौन सा, जो तुम कोर्स कराते समय बहुत यूज करते हो। पहले था सतयुग, उसके बाद फिर द्वापर, और फिर। तो ये जो और फिर शब्द है, फिर क्या, ये शब्द इनका ट्रेडमार्क है। कुछ भी हो गया तो फिर क्या। तो बाबा ने कहा ये सब क्या है, आलस और अलबेलापन का वंश। ये हो गया तो फिर क्या, अपना दोष दूसरों पर मढ़ते हैं, दूसरों को दोषी सिद्ध करते हैं, खुद के दोष को छिपाते हैं। यह है इनका ट्रेडमार्क। तो चक्र दूसरों पर चलाते हैं, जैसे तुम चक्र में समझते हो ना, फिर क्या, वैसे ये चक्र किस पर चलाते हैं, दूसरों पर चलाते हैं। लास्ट तुम अलर्ट, इजी और लेजी नहीं, इजी और लेजी नहीं। तो ये सारी मुरली है। शुरुआत कहां से की, तुम हो लाइट हाउस, केवल लाइट नहीं, केवल माइट नहीं, लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस, अर्थात स्वयं में शक्तियां भरनी है। जब होगी तो ही दे सकेंगे, और जब देंगे तो ही ये सब होगा। माननीय गाओ जाओगे, पूजनीय हो जाओगे, जब होगी तो ही वरदानी, ताता, विश्वकल्याणी, सूर्यवंशी, जब होगी जीवदाता, सर्वशक्तियों के दाता गाए जाओगे, नहीं तो नहीं। तो सारा पुरुषार्थ है स्वयं को शक्तियों से भरना, सेल्फ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, स्पिरिचुअल पावर्स। और ये स्थूल पावर्स नहीं है, सूक्ष्म पावर्स है बहुत। और यहां दूसरों को देना भी है। एक है इस मुरली में ये भी कहा है, एक है स्वयं ही स्वयं के प्रति यूज नहीं कर सकते, तो दूसरों के लिए क्या यूज करेंगे। खुद ही नाजुक है, खुद ही कमजोर है, रूठने रूसना, नाराज होना, दुखी होना, तो फिर दूसरों को शक्तिशाली कैसे बना सकेंगे। लाइट हाउस देखा है कैसे होता है, लाइट हाउस की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो बहुत ऊंचा खड़ा होता है। लाइट हाउस की विशेषताएं, पहली विशेषता स्टैंड्स हाई, बहुत ऊंचा होता है। दूसरी विशेषता बहुत शक्तिशाली। तीसरी विशेषता तूफान उसे प्रभावित नहीं करता, अनअफेक्टेड, कांस्टेंट रहता है, एक रस स्थिर। और रहते कहाँ है ये, डेंजरस प्लेसेस जो है वहां होता है ये, गार्डन में नहीं होते लाइट हाउस, शहर के बीचों बीच नहीं होते। सागर जो तूफान है जहां उठते हैं वहां पर होता है, ये रिलायबल होता है। जहाज जो है जो भटक गए उनको राह दिखाता है, सिंबल ऑफ होप, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि नाव, एक महीने से नाव की यात्रा कर रहे हैं, भटक गए, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रही है नाव, अंधेरा है और चट्टान से टकरा जाती है अगर लाइट हाउस ना हो तो। कहीं कहीं समुद्र में चट्टाने होती है समुद्र के किनारे। सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ होप, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्स्टेंट हाई, और अपना प्रकाश सबको देते, कोई पार्शियलिटी नहीं, इसको दूंगा उसको दूंगा ऐसे नहीं, और किसी नाव को जज नहीं करते, ये नहीं देखते ये किस कारण से भटके है, बस इन्हें हमें प्रकाश देना है, इन्हें बस रास्ता दिखाना है। पथ प्रदर्शक, ये क्या है? पथ प्रदर्शक है। गुरु अलग होता है, एक होता है पथ प्रदर्शक, ये दो शब्द है। जैसे किसी ने कहा कि तुम कोर्स करो, करना चाहिए तुमको कोर्स, वो जाके फिर कोर्स करता है, तो एक है कोर्स कराने वाला और एक है जिसने बताया था करो, तो ये जो पहला है वो है पथ प्रदर्शक, और जो कराने वाला है वो एक तरीके से गुरु है जिसने ज्ञान दिया। इसमें सहन शक्ति बहुत है लाइट हाउस में, बोट्स को वार्न करता है, गाइड करता है, तो ये लाइट हाउस की कुछ विशेषताएं हैं। तूफान को सहन करता है, कोई एक गांव था, उस गांव के तट पर, वो समुद्र के तट पर वो गांव बसा था, और उस गांव में ढेर समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानें थी, और अक्सर रात के अंधेरे में नाव आती थी और टकराती थी और कई लोग मारे जाते थे, दुर्घटनाएं होती ही रहती थी, ऐसी वो खतरनाक, और वो जो जल था उसमें डूबकर लोग मर जाते थे क्योंकि वो जल एकदम बर्फ जैसा ठंडा, आइसी वाटर। तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक लाइट हाउस द्वीप स्तंभ यहां बना जाए, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फंड्स लेते हैं, थोड़ा अपना सुझाव सुनाते हैं, गवर्नमेंट हाँ करती है और एक लाइट हाउस बनता है उस स्थान पर। कुछ लोग अपने आप को समर्पित ही कर देते इस कार्य के लिए कि हमें तो बस बचाना है जो सेलर्स है, जो नाविक है, जो बड़े बड़े जहाज आते हैं, टकराते हैं, कूद जाते थे ये सारे लोग और उनको बचाकर इस लाइट हाउस के अंदर ले आते थे, उनकी देखभाल करते थे, गर्म कपड़े उनको देते थे, खाना उनको देते थे, और बिल्कुल परवाह नहीं करते थे अपने जान की, कूद जाते थे। और साल में ऐसा कई बार होता था कि जो उनको कूदना पड़ता था वो कूद जाते थे, और बिना सोचे कुछ अपने अपनी सुख सुविधा की चिंता किए उन नाविकों को बचाते थे उस आइसी कोल्ड वाटर। और ये बहुत समय चला और धीरे धीरे ये लाइट हाउस बहुत प्रसिद्ध होने लगा, चारों तरफ ख्याति फैल गई, कुछ लोग आने लगे इस लाइट हाउस को स्टडी करने की, ताकि ये मॉडल है कि हमारे देश में भी हम ऐसा लाइट हाउस स्थापन करें। और वो जो लोग स्टडी करने आए उन्होंने कुछ सजेशन दिया कि इतना अच्छा लाइट हाउस तुमने बनाया है तो क्यों ना इसे और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए, यहां पर तुम लोग कारपेट बिछाओ, दीवारों को अच्छे से पेंट करो, या अच्छे से किचन बना लो, क्योंकि लाइट हाउस बड़ा है, उसमें कुछ ये कर दो, सेक्शंस कर दो, अपर फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, इसको और अच्छा कर दो। तो वो सब कर दिया गया, उसको अच्छा बनाया गया, रहने लायक बनाया गया, अलमारियां रखो, उसमें कपड़े रखो ताकि जिनको तुम लेके आते हो जो डूबने वाले होते ठंड से काप रहे उनको सब दे सको। फिर अगली बार फिर से तूफान आता है, एक नाव टकराती है और सब लोग जाते हैं और लोगों को बचा के ले आते हैं, पर जो लोग आते हैं बच्चे जो डूबे थे और जिनको इन्होंने बचाया उनके पाँव गंदे और वो सब गंदा हो जाता है, तो कुछ जो बचाने वाले होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता है, ये क्या है, हम इतने अच्छे से सब रखो, और ये तो नाव तो आधी रात को टकराती है, तो अब जब हम सोने का टाइम है हमारा तो वो जो 100 लोग होंगे उसमें से कुछ 25 लोग बिल्कुल नाखुश होते हैं, उनकी इच्छा नहीं है अब जाने की, आधी रात को उठो अपनी, ये कभी भी आ जाते हैं पार्टी वाले, उनको कोई टाइम नहीं है, ट्रेन आ जाती है ना कभी भी नीचे शांतिवन में, जाओ फिर उनको बचाओ फिर लेके आओ, और वो लोग पूरा किचन को मेस कर देते हैं जो नए आते हैं बचा, जिनको बचा कर ले आते हैं, तो वो थोड़ा सा ना खुश रहते हैं, एंग्री, और वो जाना बंद करते थे, कहते तुम लोग जाओ हम लोग आते, बहाना बनाते। फिर एक बार फिर से एक नाव टकराती है, पर इस बार जो नाव टकराती है और उसमें जो लोग है वो इस देश के नहीं है, दूसरे देश के है, उनकी चमड़ी थोड़ी काली है, वो दूसरी भाषा बोलते हैं, और अब तो ये जो लोग थे जो न जाने वाले थे उनको तो और ही आपत्ति है, अब क्यों जाए क्योंकि ये तो हमारे देश के ही नहीं है, और वो आते और सारी गंदगी फैला देते, उनके गंदे पाँव कीचड़ से सने हुए, वो कारपेट को खराब कर देते, किचन को इधर उधर कर देते, वो कहते हम तो जो फर्स्ट फ्लोर है ना जहाँ अच्छा है थोड़ा वहां रुकेंगे, बाकी इन लोगों को तुम नीचे रखना ऊपर मत लाना, हमारा एकोमोडेशन में इनकी वजह से खलल नहीं होना चाहिए, इनका थोड़ा अलग रखो। और धीरे धीरे वो कहते हैं, वो और ही ज्यादा नाखुश होते हैं, और धीरे धीरे कहते हैं कि नहीं बस अब हम काम करेंगे, ये जो लाइट हाउस है ना केवल लाइट दिखाएगा, यही तो होता है लाइट हाउस, ऐसे थोड़ी ना भाग के जाकर बचाना होता है लोगों को, तो हम इसका नाम अभी चेंज कर देते हैं, इट विल बी जस्ट बेकन, तो ये केवल लाइट देगा, और धीरे धीरे वो सबको प्रभावित कर देते जो बाकी साथी होते कि तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी देखना होता है, कोई एक दो दिन की तो बात नहीं है, पूरा जीवन दिया है ना, और कुछ लोग तो यहीं रहने आ जाते आसपास तलेटी में, अपने घर ही बना देते हैं, कॉलोनीज बना देते हैं, कुछ लोग अंदर रहते हैं कुछ आसपास रहने लगते हैं, और आयु भी बड़ी हो गई हो, किसी को बीमारियां भी हो गई, कितने सालों से बचा रहे लोगों को, हॉस्पिटल भी खोल दिया, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी रहने लगे, अंदर वाले हैं, खाना भी वही वही, सोमवार का फिक्स है नाश्ता, मंगलवार का फिक्स है, उबने लगते हैं, वही सोमवार का पोहा, फिर उपमा, फिर खिचड़ी, फिर दलिया, फिर कद्दू की सब्जी, हाँ तो कईयों ने अपना किचन फिर सेट कर दिया ना, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो फिर धीरे धीरे ये केवल नाम का रह गया लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस केवल प्रकाश दिखाता है, पर जब टकराती है तो कुछ नहीं करते, फिर इतने सालों से कहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं नए जो आए हैं वो करेंगे ना, हम कब तक करें, परंतु, और फिर धीरे धीरे केवल नाम का रह जाता है, परंतु उनमें से कुछ लोग होते हैं, कुछ गिने चुने, वो कहते हैं नहीं हमें बचाना है, और वो दूर पर अपना एक छोटा सा लाइट हाउस बनाते हैं, और अब फिर ये लाइट हाउस सबको बचाने लगता है, और ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो खुद एक दिन डूबे थे और उनको इन्होंने बचाया था, जो बचने वाले थे वही लोग ये नया लाइट हाउस फिर से स्थापन करते हैं। तो ये थी कहानी लाइट हाउस की, तो हम ही लाइट हाउस है, हम बचाए गए तो हमें क्या करना है, औरों को बचाना है। इसलिए केवल ऊपर ऊपर का न रह जाए, अपने कर्तव्यों की स्वयं को बार बार स्मृति दिलानी है कि मैं किस लिए हूँ, मुझे करना क्या है, क्या जो ड्यूटी दी गई है बस यही करने के लिए आया हूँ यहाँ, कि और भी कोई बड़ा काम है जो अब तक किया ही नहीं और जो अभी काम बाकी है और जो करना ही है और उसी के लिए तो जन्म हुआ है। तुम्हारा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। जब तुम अपने महान कर्तव्यों को भूलते हो तो कई जगह स्लोगन लिखा रहता है तो फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। और हमारा एक विचार है कि अगर ब्रह्मा कुमारीज ये संस्था अगर 100 साल चले और तो ये भी एक धर्म बन जाएगी, जैसे जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, वैसे बाकी जिस घर में जैनियों का जन्म हुआ उसको उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परदादा जैन थे, माता पिता जैन थे और वो भी जैन है, बाकी जैन धर्म का उनको कोई मतलब नहीं है। बौद्ध घर में जन्म हुआ है, सिख घर में जन्म लिया है, क्रिश्चियन में जन्म लिया, बाकी क्राइस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीढ़िया ही थे, तो दादा परदादा भी किए थे, उनके वो भी किए थे और वो भी किए, कहाँ है तो हम भी किए, केवल नाम से, बाकी करना कुछ नहीं है, पता भी कुछ नहीं उनको। जैसे ये धर्म बन जाएगा, रिलीजन बन जाएगा एक, जैसे हिंदू धर्म बन गया तो हिंदू घर में जन्म लिया, बाकी उसमें क्या है वो कुछ पता नहीं। अगर कोई प्रश्न पूछ लिया शास्त्रों का नवयुवकों से कॉलेज के, तो वो कंफ्यूज हो जाते, उनको कुछ पता नहीं है कौन किसका क्या है। इसलिए बहुत अच्छा है कि ये इतना लंबा नहीं चलेगा। अगर चल गया तो ये भी एक क्या बन जाएगा, धर्म, अपने नाम के नीचे रिलीजन में हम लिखेंगे बीके ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमारी इसके धर्म वाले हैं, ये धर्म वाले हैं, ये धर्म वाले है। समाज तक तो आ ही गया है, हम बात कर रहे हैं धर्म कहने लगेंगे, समाज तो कहते ही है उसने, वो फिर वो जो होगा सांप्रदाय बनना, वो तो धीरे धीरे सब होगा, जो बाकी धर्मों में हुआ वो इधर भी होगा, सब सब सब। क्राइस्ट ने कभी दो धर्म स्थापन ही नहीं किए थे, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक, वो तो संदेश देने आया था, इस्लाम में शिया सुन्नी, बौद्धिज्म में महायाना हीनायाना, ये दो कैसे हो गए, हर चीज में देखो दो भागों में विभक्त होने लगा। 24 तीर्थंकर है उसमें कहा दिगंबर और श्वेतांबर है, वो सब में दो 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 में विभाजित हो गया, और उसके आगे भी और विभाजित हो गया। क्रिश्चियनिटी देखो तो केवल दो नहीं है, उन दो में और 4 और 5 और 6 बहुत सारे हैं, जेहोवाज विटनेस अलग, प्रोटेस्टेंट्स अलग, कैथोलिक अलग, लूथर मार्टिन आया उसने अपना अलग, नए 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 नए, और आज तो द सेंट्स ऑफ ग्रेटर चर्च लेटर सेंट्स, द चर्च ऑफ लेटर सेंट्स, ये एक और एक डिवीजन है, कितने डिवीजन है। मॉर्मन्स पता है ना, दरवाजे पे आके खटखटाते हैं जोर जोर से, क्रिश्चियन अलग ही ग्रुप है वो क्रिश्चियंस का, जोसेफ स्मिथ का, उसमें नई बाइबल खोजी गई, जोसेफ स्मिथ नाम का व्यक्ति था कि उसने खोदा तो उसको नई बाइबल मिली, उसने सोचा ये न्यू रेवलेशन है। ऐसे कितना सारे है इस धरती पे, लगभग 4200 धर्म है, मुख्य 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 सब कुछ मिला के, उसमें से 108 मुख्य, उसमें से 12 मुख्य, उसमें से मुरली में आता है 4 मुख्य। तो हम सब कौन है, लाइट हाउस, माइट हाउस, मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणी, वरदानी, महादानी, सर्वशक्ति दाता, जी दाता, सूर्यवंशी, त्रिकालदर्शी, संतुष्ट मणि, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल कट हो जाएगा अगर ये 4 टाइटल नहीं होंगे तो, एक टाइटल भी कम होगा, ये चारों ही टाइटल्स में फुल परसेंटेज चाहिए, एक में एक सब्जेक्ट में पास विद ऑनर और दूसरे में फेल, तो बाप के समीप रत्नों में नहीं गिने जाओगे। तो ज्ञान में मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य नॉलेजफुल स्वदर्शन चक्रधारी योग में पावरफुल एसेंसफुल एसेंस अर्थात खुशबू खुशबू फैलाने वाले गुणों की खुशबू है वो खुशबू फैलाने वाले सेवा में विश्व कल्याणी विश्व कल्याणकारी। और तुम्हें क्या करनी है अपनी चेकिंग और चेकिंग को भी कैसे करते जाओ महीन चेकिंग करते जाओ तो चेकिंग करने वाले और जो चेकिंग करने वाले हैं वही क्या बनेंगे मेकर चेकर ही मेकर है बीच में है चेंजर चेकिंग करना चेंज करना और मेक करना वही बुकिंग हो सकती है। और दो कमी कमजोरियां कौन सी एक आलस एक अलबेलापन ये दोनों ही हटाना है वंश अंश सहित और क्या बनना है अलर्ट अलर्ट अर्थात लेजी नहीं इजी इजी और लेजी नहीं। तो ये थी पहली मुरली लाइट हाउस की। दूसरी मुरली ये इसकी तारीख थी 13 नहीं ये तो पुराना आज का है हाँ इसकी तारीख थी 18/6 दूसरी मुरली है 21/6 इसमें 8 निशानियां गिनाई है बाबा ने किन आत्माओं की यहां पर देखो बार बार डिवीजन है फिर से डिवीजन एक वो आत्मा है जो अपनी विशेषताओं को जानते हैं दूसरे है जो अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं तीसरे है जो अपनी विशेषताओं में स्थित है और कुछ है जिनमें तीनों ही है किसमें केवल एक ही बात है किसमें दो है तीसरी नहीं है। तो इस आत्मा में उन आत्माओं की निशानियां सुनाई है ऐसी सहयोगी आत्माओं की निशानी जिनमें ये तीनों ही बातें हैं जो अपनी विशेषता को पहला जानते हैं दूसरा कार्य में लगाते हैं और उन विशेषताओं में स्थित भी है। तो उनकी सबसे पहली निशानी है वो बाप दादा को अति प्रिय है ऐसी आत्माएं भगवान को प्रिय है जो अपनी विशेषताओं को जानती है वो उसको कार्य में ही लगाती है सेवाओं में लगाते हैं और उसमें स्थित भी है अभिमान नहीं है अहंकार नहीं है परंतु अपनी विशेषताओं को जानते हैं। अपनी विशेषता को छिपा के नहीं रखना है अपनी विशेषताओं को का भी दान करना है अपनी विशेषताओं को अपनी स्किल्स को दूसरों को सिखाना है। कई लोग होते हैं ना अपनी स्किल्स दूसरों को सिखाते ही नहीं है क्यों डर के मारे क्योंकि अगर दूसरों को सिखा दिया तो आगे बढ़ जाएगा। आयुर्वेद क्यों लुप्त हो गया भारत से क्योंकि आयुर्वेद का इतना रहस्यमय इतना गुप्त ज्ञान जो था अश्विनी कुमार धन्वंतरी दो अश्विनी कुमार फिर उनसे वो चरक सुश्रुता ये सारे आए प्रकांड ज्ञानी थे संपूर्ण ज्ञान था उनके पास। जो अभी प्लास्टिक सर्जरी करते थे नोज की प्लास्टिक सर्जरी कटे होठ वो सुश्रुता ने तभी लिख के रखा है सारा द्वापर में तो सारा तब वो लोग वहीं कर लेते थे युद्ध में इतने घायल होते थे लोग कैसे ठीक करते थे यही लोग ठीक करते थे आयुर्वेद ही तो था उसके अलावा कुछ था क्या कुछ भी नहीं था सृष्टि पर। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ये ज्ञान कहते हैं कैसे हुआ लुप्त होते गया क्योंकि वो पूरी विद्या सिखा नहीं सके या फिर सिखाई नहीं या फिर नालंदा की और तक्षशिला ये दो यूनिवर्सिटी थी जिसको जला दिया गया जब मुसलमानों की अफगान और मुगल ये दो भारत में आए अफगान आए और मुगल आए पर अफगान पहले आए फिर अफगानों को भी परास्त कर दिया मुगलों ने क्योंकि मुगल बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि उनके पास बंदूक और तोहफे थी जो कि इन लोगों के पास नहीं थी और इन्होंने ही फिर नालंदा कहां बिहार में वो 6 मास तक जलती रही उसमें कितना ज्ञान होगा इतनी किताबें होगी वो जलती रही जलती रही जलती रही इतनी किताबें थी उसमें वो लुप्त हो गया वो सारा ज्ञान। तो अपनी विशेषताओं को क्या करना है दूसरों को सिखाना है बांटना है स्किल्स दूसरों को स्किलफुल बनाना है जो तुमको आता है वो सब कुछ सिखा दो कुछ भी छिपा के नहीं रखो छिपा के रखोगे तो एक फायदा तुमको है तुम्हारी महिमा होगी बहुत होगी और सिखा दो तो हो सकता है वो सीख जाए और उसकी ज्यादा हो जाए और तुम बैकग्राउंड में चले जाओ हाँ तो खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, खुद भी ज्ञान को कंठ कर लो और दूसरों को भी कराओ, खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ, क्या? हाँ। एक पियक्कड़ बेटा अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आप एक बार इस शराब को पी लो, एक बार चख के देख लो बस, एक बार अगर आपने चख के देख ली और आपने मुझे कहा इसे छोड़ दो हमेशा के लिए, तो मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, बस एक बार आप खाली चख के एक बार देख लो बस, और फिर मैं छोड़ दूंगा अगर आपने कहा तो हमेशा के लिए। पिताजी चक्कर देखते हैं और फिर कहते हैं, बेटा अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है, तुम छोड़ सकते हो, पर मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ये भी शराब है प्रभु प्रेम की, परमात्मा प्रेम की। और उस दिन सुनाया था, जब ये शराब पीनी है तो निखिलेश भाई वो पांच बातें होनी चाहिए, कौन सी? एक तो नीट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें कुछ मिक्स मत करना। दूसरा, उसके साथ में कोई साथ और दूसरा कुछ मत लेना, लिमका कोल्ड ड्रिंक्स वो सब नहीं लेना। तीसरा, महफिल होनी चाहिए ऐसी पियक्कड़ों की, रूहानी महफिल, ऐसे श्रेष्ठ संघ होना चाहिए आत्माओं का। पहला, डोज को बढ़ाओ और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, तुमको चढ़ नहीं रही है, दिख ही नहीं रहा है पिया है करके, क्योंकि डोज ही इतना कम पी रहे हो, इतना सब पीने से थोड़ी ना होता है, और एक ही बार पी लिया सुबह, पूरा दिन भर पीना पड़ता है बार बार। ताकि ऐसे दूर से दिखाई दे कि ये है पिया हुआ, इधर इतना सा पी लिया सुबह, एक बार अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन लिया, काम पूरा हो गया, कैसे होगा काम? डोज को बढ़ाओ। अभी जो ले रहे हो 50 ml से कुछ होता है क्या? 500 ml कम से कम से आगे से, वहां से तो चालू करो, और दिन भर 2 hourly, 1 hourly, 6 hourly, 4 hourly, अब जो रियल होते हैं ना उनके पास स्टॉक हमेशा होता है, कहीं नहीं तो टोपी के अंदर से निकालेंगे या पीछे से निकालेंगे, या सॉक्स में तो एक रखते ही इमरजेंसी के लिए, कहीं पता नहीं जेल में जाना पड़ गया, दुकान ही बंद हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, तो वो हमेशा अपने पास स्टॉक तो रखते ही है। उनका जो प्यार होता है उससे गहरा और एकदम जिगरी प्यार होता है, ऐसे रूहानी पियक्कड़। तो सबसे पहले ये तीन बातें बताई, और इसमें फिर 8 विशेषताएं। सबसे पहली बात, ऐसी आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय है। कौन सी आत्मा? जिनकी जो अपनी विशेषता को खुद जानते हैं, वो कार्य में लगाते हैं और उसमें स्थित भी है, ऐसी आत्माएं बाबा को सबसे पहली पॉइंट अति स्नेही है, वो बाबा की अति प्रिय है। दूसरा, ऐसी आत्माएं सहज योगी है, सरल योगी है, स्वतः योगी है, यह सेकंड विशेषता। ये इसमें नहीं लिखा ना? नहीं नहीं, इधर नहीं लिखा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसी आत्माएं होगी वो कैसी होगी? हमेशा खुमारी होगी, हमेशा खुशी, उनके नैन उनके चैन से वो स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि उनको खुशी है कि हम हमारी विशेषताएं यज्ञ में लग रही है, हमारे अंदर जो भी है वो सब हम अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, या फिर सेवा में लगा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि हम सभी इस ईश्वरीय यज्ञ के ऋणी हैं। हम सभी क्या है? ऋणी है। इस यज्ञ ने हमें पहचान दी है, यह सबसे बड़ी बात है। क्या थे और क्या बन गए? जीवन का लक्ष्य ही नहीं था। संसार के लोग देखो, रास्ते पे चल रहे, भटक रहे, उनकी बातें सुनो, किस तरह की बातें, वही सांसारिक बातें, वही भोग विलास की बातें, वही सांसारिक चिंताएं, वही सब कुछ, रिश्ते नाते, बहुत दलदल है एकदम भयंकर सा। उस सब से बाहर निकाल कर तो हम ऋणी हैं। ये यज्ञ हमारा गुरु है और गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। क्या दी? गुरु के यहाँ शिक्षा लेते जाते समय गुरु दक्षिणा देते हैं, तो इसकी सेवा, इसका विस्तार। चौथा, बाप की जो स्मृति है, बाप समान बनने की स्मृति इनमें निरंतर रहती है। यही रुक जाना नहीं है, वाह गए यार सब कुछ चल रहा है, पर निरंतर एक प्यास, एक तड़प कि मेरा करना क्या है, वो स्मृति इनमें निरंतर रहती है। पांचवा, कदम पर कदम, बाप के कदम पर कदम। मुरली में शब्द प्रयोग क्या किया गया है? बाप कदम पिछाड़ी कदम। छठवा, छठवा क्या? त्रिमूर्ति स्नेही, ये आत्माएं क्या होगी? त्रिमूर्ति स्नेही, बाप के संबंध में फरमान बरदार, टीचर के संबंध में वफादार और ईमानदार, और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी। गुरु ने कह दिया है बस करना है। गुरु को कोई जाके प्रश्न पूछता है क्या? शिष्य, गुरु जी आपने ऐसा क्यों कहा? बस आपकी आज्ञा सर आंखों पर, आपने कह दिया, अब ये प्रश्न नहीं पूछना, ये क्यों, क्या, कैसे, कहां, कुछ नहीं, बस जो उन्होंने कहा है वो करना है। यही ट्रेनिंग है गुरुकुल में, ये ईश्वरीय गुरुकुल है, और यहां भगवान हमारा सदगुरु है। हम इस गुरुकुल में आए हैं और गुरुकुल में जीवन कैसा जिया जाता है? एकदम साधारण, राजसी थाट बाट दूर, वनवाह में तुम हो। गुरु जो कहेगा, वन से लकड़ियां तोड़कर लाओ, लकड़ियां तोड़कर लाना, सब कुछ करना, गुरु से पहले जागना, गुरु के बाद सोना। तो रामायण में राम जी को भेज रहे वन में, तो दशरथ नियम सुना रहा है चारों पुत्रों को, रानियां बैठी है, ये सब करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। कैकेयी कहती है कि हम यहां से रोज आपके लिए अच्छे अच्छे मिष्ठान भिजवाएंगे वहां के लिए। दशरथ कहता है ना, वहां तो समता है, सबके साथ रहना है। दूसरी माताएं कहती है कि हम बीच बीच में आपसे मिलने आएंगे। दशरथ कहता है ना, नॉट अलाउड, क्योंकि वो गुरुकुल जा रहे, तप करने जा रहे, कोई पिकनिक करने नहीं जा रहे, कोई मनोरंजन के लिए नहीं जा रहे। वहां तो नीचे जमीन पर सोना पड़ेगा, कंदमूल पर खाना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, और सबके साथ समान रहना पड़ेगा, कोई किसान का, कोई सारे जो क्षत्रिय होंगे वहां होंगे सबके साथ। ये नहीं कि ये राजा का बेटा है, कोई मंत्री का बेटा होगा, कोई पुरोहित का बेटा होगा, कोई सेनापति का बेटा होगा, सब सेम है वहां पर। ये यज्ञ भी ऐसा ही है, ये ईश्वरीय गुरुकुल है। तो क्या निशानी बताई? त्रिमूर्ति स्नेही अर्थात सदगुरु के प्रति आज्ञाकारी, शिक्षक के प्रति वफादार, ईमानदार। जो शिक्षक है उसने जो कार्य दिया है, गृह कार्य दिया है, उसके प्रति ईमानदार, चीटिंग नहीं एग्जाम में, ईमानदार। कौन देख रहा है? संसार का कोई नहीं देख रहा है, पर अंदर जो आत्मा है ना, वो तो देख ही रही है। अंदर साक्षी जो बैठा है वो तो देख रहा है, और कोई देखे ना देखे। और पहला, बाप के संबंध में फरमान बरदार। तो इसको बाबा ने क्या शब्द प्रयोग किया? जैसे बाप के त्रिमूर्ति रूप है, ये तुम्हारे त्रिमूर्ति स्नेही बनो, तो ऐसी आत्माएं क्या होगी? त्रिमूर्ति स्नेही। फरमान और आज्ञा, और एक तीसरा भी होता है, फतवा। फतवा अगर आ जाए तो ये नहीं कह सकते देखता हूं करना कि नहीं करना, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। आज्ञा एक है, आज्ञा एक है, आज्ञा हिंदी शब्द है, फरमान उर्दू शब्द है, फतवा उसके भी ऊपर का है, डेक्री ऑर्डर, लिखत, वो तो करना ही करना है, अगर वो नहीं किया तो दंड के भागी होंगे। बाबा कई मुरली में कहते, बाप तुम्हें सजेस्ट करते, ओपिनियन देते, ये बाप की मत है, कई बार क्या देते, मत, बाप तुमको राय देते, देखो करना है तो करो, ये प्यूरिटी के लिए नहीं कहते, बाप तुमको राय देते, देखो प्योर बनना है, बाप का ये आज्ञा है, बाप का ये फरमान है, बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, प्योर बनो, ये हाँ ये शब्द आते, हाँ श्रीमत के लिए आते, देखो बाप तुम्हें राय देते हैं, राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, सजेस्ट करते हैं, अगर कुछ तुमको नहीं समझता है तो बाप से राय लो वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द आते। तो फरमान, फरमान थोड़ा आज्ञा से स्ट्रिक्ट है, फरमान ये फरमान है, और उसमें हिंदी में फरमान नहीं होता, फरमा होता है, फरमा बरदार, उर्दू में फरमा बरदार। तो आज्ञा किसकी, बाप की, बाप ने कहा बस करना, टीचर बाप का फरमान बरदार कहा इसमें, टीचर की आज्ञा। सदगुरु की आज्ञा, टीचर की ईमानदार और वफादार, और बाप का फरमान बरदार। एक मुरली में थोड़ा आगे पीछे है, उसकी इच्छा, तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुम को हो वो पसंद वही बात कहेंगे। यही तो है कि आज उसने ये कहा ना, तो बस ये राइट है, आज यही है, ये तीनों का प्रैक्टिकल स्वरूप, ये तीनों का प्रैक्टिकल स्वरूप। क्या प्रश्न क्यों पूछा, मतलब इससे गलत, इससे हट गए तुम, ऐसा हो गया। तो ये एक बात। फिर सातवां, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर पे खुद नहीं चल सकते तो दूसरों को क्या चलाएंगे, चलने वाले ही चलाने वाले बनेंगे। कितना अच्छा वाक्य है, चलने वाले ही चलाने। तो मैं अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने संकल्प को और अपने स्वभाव को लॉ ऑर्डर पे चला रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर। लॉलेस जो होंगे वो लॉफुल नहीं हो सकते, एक है लॉलेस, एक है लॉफुल, इसके लिए लॉ बहुत जरूरी है। इसलिए प्यूरिटी लॉ है, लॉ, लॉ को अगर ब्रेक किया आउट, क्योंकि वो लॉ है, लॉ ब्रेकर नहीं, लॉ मेकर बनना है। कई देशों में लॉ होता है राइट साइड में गाड़ी चलाना, कई देशों में लॉ है लेफ्ट साइडेड, तो उसको कहते हैं, जाता है लेफ्ट साइडेड ड्राइविंग, राइट साइडेड ड्राइविंग। एक व्यक्ति को स्विट्जरलैंड जाना था, वो कार एजेंसी के पास जाता है, कहता है मुझे कार हायर करनी है, वहां के लिए बुक करनी है स्विट्जरलैंड, भारत से, भारत में कौन सा ड्राइविंग है, लेफ्ट ड्राइविंग, लेफ्ट रास्ते के लेफ्ट साइड से चलो, स्विट्जरलैंड में राइट है। तो वहां से वो कार लेता है और वहां पर उसको समझाते हैं भारत वाले को, भारत से ही, कि वहां पर ड्राइविंग जो होती है ना राइट साइड में की जाती है। ये लिस्ट है देशों की, राइट वाले ड्राइविंग कौन सी है, लेफ्ट वाले। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बुकिंग कर दो कार का। 15 दिन के बाद वो वापस उसी बुकिंग ऑफिस में आता है पूरा घायल, बोलते ये क्या हो गया, बोलते मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा था, पर प्रैक्टिस कहाँ कर रहा था, भारत में। कहाँ की प्रैक्टिस, स्विट्जरलैंड की, जहां राइट साइड में ड्राइविंग होती है, पर प्रैक्टिस कहाँ कर रहा था, इधर इंडिया में। लेफ्ट, हाँ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ को पहले जानना है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। गलत साइड से गाड़ी चलाओ, पुलिस पकड़े और उसको कहा अच्छा इधर से ऐसा चलाना था, मुझे तो पता नहीं था, अच्छा अच्छा बेटा जाओ घर। पुलिस ऐसा बोलता है क्या, तुमको पता नहीं था ना, जाओ जाओ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन, ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, पता नहीं था, अरे बाबा ने कहा है जाओ पढ़ो, 70s की मुरलियां क्यों नहीं पढ़ी थी, 80s की मुरलियां क्यों नहीं पढ़ी थी, उसमें इस पेज पे, इस लाइन में, इस मुरली में मैंने कहा क्या के रखा था। तुम ये नहीं कह सकते बाबा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बाबा ये तो मुझे पता ही नहीं था, पता कैसे नहीं था। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं क्या करूं, वो तुम्हारी समस्या है, तुम्हें सारा ज्ञान वापस से रिवाइज करना है। बाबा ने तो कह रखा है, सारी बातें कह रखी है, परखना है। उस दिन रॉयल्टी वाली आत्माओं की निशानी आई है, वो क्या करते, किसको प्रभावित करते, माया द्वारा प्राप्त वरदान की कौन सी विशेषता है उनके पास, जो माया के प्रभाव में है और जो नए पुरुषार्थी है उनको प्रभावित करने की विशेषता रॉयल आत्माओं में, रॉयल पुरुषार्थी आत्माओं में। कितनी गहरी पॉइंट थी उस दिन, माया ही माया है सब तरफ, तुम माया के संसार में हो घिरे हुए, चारों तरफ माया है, केवल पहचान नहीं पा रहे हो। बस भगवान को पहचाना, पर जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ दिन बिताते हो, शायद वही सबसे बड़ी माया है। किसी की छाया भी ना होता है। एक भाई है ना, उनके युगल का दोनों ज्ञान में है, तो हमने कहा उनको, दोनों साथ में ही थे, वो बहन भी साथ में थी डॉक्टर, तो मैंने उनको पूछा कैसे हो, तो भाई कहते हाँ माया की छाया में और छाया की माया में, माया की छाया में और छाया की माया में। तो ये है सातवां, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी। और लास्ट आठवां, चेकिंग करने वाले, महीन चेकिंग करने वाले ही महान पद की क्या करेंगे, उधर बुकिंग। और इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया एसी का, एसी एयर कंडीशन का जो बुकिंग करते हैं ना, एक है फर्स्ट क्लास का, एक है फर्स्ट डिवीजन, एक है एसी। तो फर्स्ट एसी का बुकिंग वही कर सकते हैं जहां यहां एयर को जैसे चाहो वैसे कंडीशन, वैसे जिस सीट पर अपने को चाहो वैसे सेट कर सको, यह है एसी का बुकिंग। तो ये कितनी बातें हो गई, आठ। तो रविनेश भाई बताओ आठ बातें, चेकिंग करना यहां से नहीं चालू करना है, ऊपर से चालू करना है। गायत्री बहन आठ बातें बताओ। सबसे पहला, किन आत्माओं की आठ बातें, जो अपनी विशेषताओं को जानते हैं, अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं, अपनी विशेषताओं को में स्थित है, उनकी सबसे पहली निशानी है स्नेही, वो बाप दादा के स्नेही। दूसरी, सदा सरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी। तीसरा, खुशी, खुमारी, नैन चैन सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। चौथा, बाप समान बनने की स्मृति निरंतर रहती है। चौथा, कदम पर कदम, कदम पर कदम। छठवा, त्रिमूर्ति स्नेही। सातवा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर पे चलने वाले, चलने वाले ही चलाने वाले बन सकते हैं। जो खुद ही नहीं चलते लॉ ऑर्डर पे, दूसरों को क्या सिखाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर। अगला, महीन चेकिंग करने वाले ही क्या कर सकेंगे, बुकिंग। आगे की बुकिंग अगर करनी है तो कैसे होगी, यहां चेकिंग। अब सारी मुरली, दोनों मुरलियों का अगर सार ले लो तो क्या है, चेकिंग, खुद की चेकिंग करना, खुद की चेकिंग करना, दूसरों की नहीं। हाँ, इस मुरली में यह भी कहा है, वो क्या बन जाते हैं, लॉयर्स। क्या बन जाते हैं, लॉयर्स। बनना है लॉफुल पर बन जाते हैं लॉयर्स। जैसे लॉयर होता है वो सच को झूठ को सच से सिद्ध कर देता है, और जो निर्दोष है उसको दोषी बना देता है, जेल में भेज देता है। लॉयर्स के लिए एक लॉयर की कब्र थी, वहां से एक मम्मी और उसके मम्मी और बेटा गुजरता है, वहां लिखा रहता है हियर लाइज द ऑनेस्ट लॉयर। तो बेटा कहते हैं यहां दो दो लोग हैं क्या, समझ में आया क्या, छोड़ो। तो ये आठ, हाँ अच्छा, ट्रॉफी आ जाओ जो। तो ये 71 वाली है ना, अव्यक्त क्रांति की, नहीं लाए। हाँ, तो आज का होमवर्क नंबर 1, लाइट हाउस की विशेषताएं क्या क्या है, आज 12 गिनाई है
वो सारी,
वो लिखनी है पहला। दूसरा होमवर्क, जो पूरी मुरली है दूसरे नंबर की, उसमें वो सारे सोमानों की लिस्ट है, वो सारे सोमान। तीसरा होमवर्क, ये आठ विशेषताएं तीसरा। और चौथा, सेल्फ चेकिंग कैसे करें, इस पर चिंतन, क्या करे कि जिससे सेल्फ चेकिंग हो। सेल्फ चेकिंग कहते तो सब है करो करो करो, पर करना कैसे वो तो कोई नहीं सिखाता। उस पर कल चर्चा करेंगे कि सेल्फ चेकिंग में करना क्या है। बाबा कहते दरबार लगाओ, कैसे लगाए? तुम राजा हो मंत्री है, कैसे कैसे कैसे? तो आज का सबके लिए चिंतन का बिंदु क्या है, यह जो सेल्फ चेकिंग है इसको कैसे करे, प्रैक्टिकल विधि क्या है इसकी। और बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कई बार करो, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और छोड़ दिया, कई बार करो। और किसी मुरली में कहा है दिन भर करते रहो, ये भी कहा। तो ये ट्रॉफी है दीपाली बहन को। 1 से 21 अप्रैल में जो अव्यक्त क्रांति भट्टी हुई थी 71 की, टोटल कितनी मुरलियां थी, ज्यादा थी तो वो सारी, तो ये ट्रॉफी अर्थात लायन जोन की ट्रॉफी। लायन जोन की ट्रॉफी के हकदार कौन है? जिसका बफेलो जोन 0 है। भट्टी के तीनों चारों रूल्स पूरे फॉलो किए थे और रोज का होमवर्क रोज करके उसी दिन जो पोस्ट किया था उनके ये हकदार है। तो आशीष भाई आपको ट्रॉफी कब मिलेगी अब ये बताओ, यहां पर सारे क्राइटेरिया फुलफिल है 90%। तो पुरुषोत्तम भाई, निखिलेश भाई, सुशील भाई, लखन भाई, रविनेश भाई, अरविंद भाई और सुखदेव भाई और शिवानी बहन का तो धवल क्रांति में है धवल क्रांति में। गायत्री बहन का कहाँ है? तो कब मिलेगी आपको? अभी आप इतने लोगों को काम दे रहे हैं ट्रॉफी का। और शर्मिला बहन तो, और विठल भाई, विठल भाई का है ना धवल क्रांति में है। तो अगले जब चाहे तब दे, नहीं ये तो हक से लेना है, ये देने की बात नहीं। ये ट्रॉफी का महत्व नहीं है, महत्व ट्रॉफी का नहीं है, महत्व है होमवर्क का, महत्व है मूल्यों के अध्ययन का, महत्व है समर्पण का। इसलिए ये कोई स्थूल इसमें कुछ भी नहीं है, ये स्थूल ट्रॉफी है ही नहीं। मूल्यों में तो कितना आता है बाप बख्शीश देंगे बख्शीश देंगे, तो वो बाबा भी तो कहते हैं ये सब। तो ये सूक्ष्म है, ये निशानी मन के विजय की है। छोटी छोटी ट्रॉफी जमा करनी है, छोटी छोटी ट्रॉफी तो एक बड़ी ट्रॉफी मिलेगी फिर। नहीं ये सब मिलके इकट्ठी नहीं सबको इंडिविजुअल लेनी है अभी इस बार जो ट्रॉफी होगी जून जुलाई और अगस्त, इन तीनों में से जिसने कोई एक भट्टी की ट्रॉफी मिलेगी। तीन कुछ आदि जून आदि नहीं पर फुल, तीनों भी किया तो भी एक पर एक का देना है, ठीक है? तो ये तीन मिलके एक जून जुलाई और अगस्त। तो अभी जुलाई का चल रहा है अगस्त, तो वो जो फॉर्म जो दिया जाएगा अगस्त के एंड में दिया जाएगा, ठीक है? तो दीपाली बहन के लिए ये ट्रॉफी। दो शब्द
ओम शांति। ट्रॉफी बहुत देरी हो गई लेने में ये ट्रॉफी मेरी अकेले की नहीं है, जितने भी मधुबन निवासी हैं पांडव भवन या हॉस्पिटल उन सब की साथ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से और स्थूल रीति से उन्होंने मदद की है, जैसे होमवर्क करने में या कुछ भी उनमें बहुत मदद, जैसे हम बोलते हैं चिमन चाचू भाई उन्होंने बहुत मदद की इसमें। तो मेरी अकेले की नहीं है, ये पांडव भवन के सभी भाइयों और बहनों की है, जैसे हमारे रूम पार्टनर उनकी भी है क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की थी इसके लिए। अच्छा, और खुशी होती है मिलती है तो। अच्छा, ओम शांति।
अच्छा कार्ड बनाए हैं? हाँ, तो अभी आज के दीपाली बहन की तरफ से कार्ड। ऊपर लगा ये आसमान नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां पीछे रह जाए। ये ट्रॉफी कॉन्फिडेंस अंदर क्रिएट करती है। एक माता है जिसका मैसेज आया था, मुझे आज तक जीवन में जितनी भी एग्जाम दी सब में ही फेल थी, पहली बार जीवन में 80 मार्क्स मिले, उसकी इतनी उसको खुशी, इतनी खुशी। तो खुशी तो हो गई ना। कई लोग ऐसे हैं कि जीवन में कभी उनको कोई मेडल ट्रॉफी कुछ भी नहीं मिला है, कोई बख्शीश, और उनके साथी जो थे उनको कुछ ना कुछ मिलता गया। तो एक बहन ने ऐसे भी कहा है कि मुझे ये ट्रॉफी का इम्पोर्टेंस नहीं है, पर जैसे वो गीत में ना, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, सभी मुझसे जीतते गए जीवन में, पहली मैं हर हमेशा हारता गया, पहली बार जीत का अनुभव हो रहा है, तो ये भी इसलिए इसका महत्व है, फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड विक्ट्री। ओम शांति।
तो जहां पीछे रह जाए, क्यों पर लगा के आसमां भी नीचे रह जाए, जो दूड़े तो जहां भी पीछे रह जाए, हाथ उठा चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारमा बना, कुछ यूं चले आ के सब हो अपने पीछे, कुछ यूं उठे हम के तारों से ऊपर, खुद से लड़े हम वो खुद से बेहतर, लेके जमीन से आसमां तक अपना नाम लिख जाए।